नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। शेयर बाजार में गिरावट का सिलसिला गुरुवार को लगातार छठे कारोबारी सत्र में जारी रहा। विदेशी कोषों की निकासी तथा वैश्विक बाजारों से नकारात्मक रुख से बाजार पर बड़ा असर पड़ा। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स शुरुआती कारोबार में 800 से ज्यादा अंक टूटकर 63,774.16 अंक पर आ गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 123.60 अंक के नुकसान से 18,962.60 अंक पर कारोबार कर रहा था। सेंसेक्स की कंपनियों में टेक महिंद्रा का शेयर लगभग 3% टूट गया। कंपनी के जुलाई सितंबर तिमाही के एकीकृत शुद्ध लाभ में 61% गिरावट आई। महिंद्रा एंड महिंद्रा, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर्स, नेस्ले और टाइटन के शेयर भी नुकसान में थे। सिर्फ एक्सिस बैंक का शेयर लाभ में कारोबार कर रहा था। एक्सिस बैंक ने सितंबर में समाप्त तिमाही में 5,864 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया है। सार्वजनिक क्षेत्र के पंजाब नेशनल बैंक का चालू वित्त वर्ष के दूसरे तिमाही में शुद्ध लाभ लगभग 4 गुना होकर 1,756.13 करोड़ पर पहुंच गया। ब्याज आय बढ़ने और फंसे कर्जों के लिए प्रावधान की जरूरत कम होने से उसका लाभ बढ़ा है। पीएनबी ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को जुलाई सितंबर तिमाही के वित्तीय नतीजों की जानकारी देते हुए कहा कि एक साल पहले की समान तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 411.27 करोड़ रहा था। आलोचित तिमाही में बैंक की ब्याज आय 31% बढ़कर 26,355 करोड़ हो गई, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में ये 20,154 करोड़ थी। फंसे कर्जों के लिए वित्तीय प्रावधान भी इस तिमाही में घटकर 3,444 करोड़ पर आ गया। भारत को 14 सदस्यीय हिंद प्रशांत आर्थिक रूपरेखा के तहत आंकड़ों के सीमा पार मुक्त प्रवाह को लेकर बाध्यकारी प्रतिबद्धताओं पर सहमत नहीं होना चाहिए। शोध संस्थान ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव ने यह राय जताई है। शोध संस्थान का मानना है कि ऐसा करने पर भारत के लिए नीतिगत गुंजाइश बंद हो जाएगी। IPEF को 23 मई को टोक्यो में अमेरिका और हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य भागीदार देशों द्वारा संयुक्त रूप से पेश किया गया था। 14 IPEF भागीदारों का वैश्विक GDP में 40% और वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार में 28% हिस्सा है। भारतीय पूंजी बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए निवेश सितंबर के अंत तक 6 साल के उच्चतर 1.33 लाख करोड़ पर पहुंच गया। ये लगातार 7वां महीना है जबकि पी नोट्स के जरिए निवेश में मासिक आधार पर बढ़ोतरी हुई। ये वृहद आर्थिक बुनियाद की मजबूती को दर्शाता है। सेबी के आंकड़ों से पता चलता है कि ये जुलाई 2017 के बाद पी नोट्स के जरिए निवेश का सबसे ऊंचा आंकड़ा है। उस समय पी नोट्स के जरिए निवेश 1.35 लाख करोड़ था। ताजा आंकड़ों में शेयरों, बॉन्ड और हाइब्रिड प्रतिभूतियों में निवेश का ब्यौरा शामिल है। जापान की वाहन कंपनी टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन ने भारत में विनिर्माण क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। देश में उसके 2 संयंत्र पूरी क्षमता पर परिचालन कर रहे हैं। कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये बात कही। यहां जापान मोबिलिटी शो के मौके पर मीडिया से अलग बात करते हुए टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन के बोर्ड के सदस्य और कार्यकारी उपाध्यक्ष योइची मियाजाकी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि कंपनी भारत में अपने संयंत्र के पूरे क्षमता इस्तेमाल पर पहुंच गई है। ये पूछे जाने पर कि क्या कंपनी देश में क्षमता बढ़ाने के लिए नया निवेश करेगी, उन्होंने कहा, हमने इस बारे में चर्चा शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि भारत में कोविड महामारी के बाद ऊंचे खंड की कारों की मांग विशेष रूप से बढ़ी है। सिलिकॉन वैली की एक AI कंपनी ने बिहार में कार्यालय खोला है, जिससे ये अमेरिका से राज्य में प्रवेश करने वाली पहली IT कंपनी बन गई। सांता क्लारा मुख्यालय वाली टाइगर एनालिटिक्स ने इस महीने पटना में अपना पहला कार्यालय खोला। टाइगर एनालिटिक्स के संस्थापक और CEO महेश कुमार ने हाल ही में एक साक्षात्कार में PTI भाषा से कहा, हम उम्मीद कर रहे हैं कि हमने जो शुरुआती कदम उठाए हैं उसने आगे चलकर काफी प्रगति हो सकती है। फिलहाल कंपनी के भारत में लगभग 4,000 कर्मचारी हैं, इनमें से ज्यादातर चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में हैं। कुमार, जो खुद बिहार से आते हैं, ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान कंपनी के ज्यादातर कर्मचारी बिहार अपने घर चले गए और वहीं से काम करना शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुनाम राजन और अर्थशास्त्री रोहित लांबा ने भारतीय अर्थव्यवस्था के भविष्य पर एक किताब लिखी है, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर नाम की इस किताब में अर्थव्यवस्था के आकार और रोजगार देने की क्षमता जैसे महत्वपूर्ण सवालों के जवाब तलाशे गए। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया के बिजनेस इनप्रिंट के तहत दिसंबर में प्रकाशित होने वाली ये किताब अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत के सामने आने वाली महत्वपूर्ण चुनौतियों पर प्रकाश डालती है। PRHI ने एक बयान में राजन के हवाले से कहा, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। अब हम जो निर्णय लेंगे वह इसके आर्थिक भविष्य को तय करेगा। हमारी पुस्तक भारत के विकल्पों को रेखांकित करती है, या तो वह पुराने रास्तों को अपना सकता है या एक नई योजना बना सकता है। किताब में बताया गया कि भारत कैसे मानव पूंजी में निवेश करके उच्च कुशल सेवाओं और नए उत्पादों पर केंद्रित विनिर्माण को बढ़ावा देकर तथा देश को विचारों और रचनात्मकता का केंद्र बनाकर आर्थिक वृद्धि को गति दे सकता है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।